سامنا خواتین و حضرات، ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ آف دل کی بات۔ اگر آپ یہ ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں اور آپ نے پچھلی ایپیسوڈ نہیں دیکھی جو کہ اکانومی کے اوپر تھی، تو میں آپ کو ارج کروں گا کہ یہاں پر کہیں پر وہ اپیئر ہو رہی ہوگی، وہ ضرور دیکھ لیں، بیکاز اس میں بہت ساری چیزیں اس سے کنیکٹڈ ہوں گی۔ تو اٹ وڈ بی ویری یوزفل کہ آپ پہلے وہ دیکھیں پھر آپ اس کی طرف آئیں۔ آج کے ایپیسوڈ کے اندر ہم ڈسکس کریں گے کہ پاکستان کے انٹرنل جو کرنسی ہے، جو روپیہ ہے، اور انٹرنل لونز، انٹرنل گورنمنٹ کا ریونیو، یہ تمام چیزیں کیسے کام کرتی ہیں۔ بٹ بیفور انڈرسٹینڈنگ دیٹ، سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ کرنسی کو سمجھ لیں۔ کرنسی جو ہم سب جانتے ہیں، ہم صبح شام اس سے جاتے ہیں، چیزیں خریدتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں۔ اب وداؤٹ گوگلنگ، وداؤٹ لوکنگ، میں چاہوں گا کہ آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا آپ کو پتا ہے کہ کرنسی کے اوپر جو ٹیکسٹ لکھا ہوا ہوتا ہے، جو ہم صبح شام دیکھتے ہیں، ہم صبح شام آگے کرنسی سے چیزیں خریدتے ہیں، اس کا جو ٹیکسٹ ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ آئی ایم شیور کچھ لوگوں کو پتا ہوگا، بٹ 99% آف دا پیپل دیٹ آئی ہیو آسکڈ ان ریئل لائف جنرلی ان کو نہیں پتا ہوتا۔ اینڈ سو آئی تھاٹ کہ میں ذرا اس سے اسٹارٹ کروں اور میں کرنسی کو تھوڑا سمجھا دوں، کیونکہ وہ سمجھ گئے تو آگے بہت ساری چیزیں خود سے سمجھ آ جائیں گی۔ یہ ایک 5,000 روپے کا نوٹ ہے، اس کے اوپر لکھا ہے جی بینک دولت پاکستان 5,000 روپیہ، حامل حضا کو مطالبہ پر ادا کرے گا، حکومت پاکستان کی زمانے سے جاری، جمیل احمد گورنر بینک دولت پاکستان۔ بینک دولت پاکستان بینگ اسٹیٹ بینک آف پاکستان۔ اب یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ بیسیکلی ایک کانٹریکٹ ہے، جو کانٹریکٹ وہ آپ سے کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ یار حامل حضا کو مطالبہ پر ادا کرے گا، مطلب آپ جب یہ کیش دیں گے تو اس کے عوض آپ کو 5,000 روپیہ ملے گا۔ اب تھیوریٹیکلی دس ڈزنٹ میک سینس، سو آپ کو ہسٹری میں جانا ضروری ہے، کیونکہ یہ جو کیش نوٹ تھا یہ بیسیکلی ایک کانٹریکٹ تھا کہ یہ آپ اسٹیٹ بینک کو دیں گے، اور اسٹیٹ بینک اس کے عوض ایک اسٹیپولیٹڈ اماؤنٹ آف گولڈ آپ کو دینے کا پابند ہے، آپ کے مطالبہ پر آپ کو ادا کرے گا۔ اب یہ بڑی کنفیوزنگ سی بات ہے، میں نے پتہ نہیں کیا بول دیا ہے، گولڈ، کیش، کرنسی، مطالبہ، تو تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں۔ دیکھیں، دنیا جب شروع ہوئی نا ارلی ڈیز کے اندر، تو اس وقت ہوتا تھا بارٹر ٹریڈ۔ بارٹر ٹریڈ سے مراد میں گندم بناتا ہوں، آپ مرغیاں بناتے ہیں، میں اپنی گندم آپ کو دوں گا، اس کے عوض کچھ مرغیاں آپ سے لے جاؤں گا، اور ایسا ہی سسٹم چل رہا تھا۔ تھوڑی سی کمیونٹیز تھیں، اکانومیز اتنی کمپلیکس نہیں تھیں۔ آہستہ آہستہ جب دنیا نے ترقی کی تو ایک تو کمپلیکسٹی بڑھی، مختلف چیزیں بڑھیں، پروڈکٹس بڑھیں، ریکوائرمنٹس بڑھیں، تو اس سے ہوا یہ کہ اب ایسا ضروری نہیں تھا کہ یار میں آپ سے مرغی ہی لینا چاہتا ہوں اپنی گندم بیچ کے، آپ کو میری گندم کی ریکوائرمنٹ ہے، لیکن مجھے تو ایکچولی گندم بیچ کے کپڑے خریدنے تھے۔ تو اس سے ایک انٹرمیڈیری درمیان میں آیا گولڈ، جو کہ ایک فائنائٹ ریسورس تھا، ویلیوبل ریسورس تھا، اور اس نے آ کے انٹرمیڈیری کا رول ادا کیا، یعنی کہ میں آپ کو گندم دوں گا، آپ اس کے عوض مجھے گولڈ دے دیں گے۔ اب اس گولڈ کو لے کر جاؤں گا میں جا کے، مجھے مارکیٹ میں جو بھی خریدنا ہے وہ میں خرید لوں گا۔ اب یہ ضروری اس وجہ سے تھا کیونکہ اگر میں فار ایگزامپل گندم سال میں ایک دفعہ اگاتا ہوں اور میں نے سال میں ایک دفعہ بیچنی ہے، تو میں پورے سال کس طرح سے خریداری کروں گا؟ تو وہ بیسیکلی یہی ہے کہ میں جاؤں گا، میں جا کے سال میں ایک دفعہ بہت سارے ڈفرنٹ لوگوں کو گندم بیچ دوں گا، ان سے سونا لے لوں گا، پھر میں اوور ٹائم تھوڑا تھوڑا سونا لوٹا کر کے، میں سبزیاں لینی ہیں، میں نے کپڑے لینے، میں نے جو بھی لینا ہے وہ میں لے سکتا تھا۔ اب بائی اینڈ لارج دنیا میں ایسا ہی سسٹم چل رہا تھا، کبھی سونے کی اشرفی تھی، کبھی لوہے یا تانبے کی سکے تھے، اور اس طرح سے ڈفرنٹ ڈفرنٹ امپائرس کے پاس جو ان کی کرنسی تھی وہ اسی طرح کسی پریشس میٹل کے اراؤنڈ بنی ہوئی تھی، جو کہ لارجلی ایک فائنائٹ ریسورس تھا۔ پھر 21ویں صدی میں ہوا یہ کہ سینٹرل بینک سے مرج کیا، اور انہوں نے کہا کہ یار تمہارا جو پریشس میٹل ہے، جو کہ اس ٹائم کے اوپر گولڈ تھا، تم وہ سارا کا سارا ہمیں دو، تم اس کو لے کے پھرتے ہو، چوری کا بھی خدشہ ہے، گم بھی ہو جاتا ہے، 10,000 مسائل ہیں، تم اپنا پریشس میٹل ہمیں دو، ہم تمہیں ایک کانٹریکٹ دیں گے۔ جب اوریجنل کرنسی آئی تو وہ ایک ایک پیج کی کرنسی تھی، جس کے اوپر لکھا ہوتا تھا کہ یار اتنے گولڈ کے عوض یہ کانٹریکٹ ہے، اس کانٹریکٹ کو تم لے جا کے کسی اور کو بھی دے سکتے ہو، وہ جب کانٹریکٹ شو کرے گا تو ہم اس کا گولڈ اس کو واپس کر دیں گے۔ اب ظاہر اس سے ہوا یہ کہ یار میرے پاس کانٹریکٹ آ گیا، اب اگر مجھے کسی سے کوئی چیز خریدنی ہے تو میں اسٹیٹ بینک سے گولڈ لینے کے بجائے میں جا کے اس کو کانٹریکٹ دوں گا، میں کہوں گا یار میں نے بھی تو نکالنا ہی ہے نا، یہ کانٹریکٹ لے لے، تو نکال لے آگے جا کے۔ اب وہ بندہ بھی آگے کسی سے کچھ خریدے گا تو وہ بھی کانٹریکٹ آگے کرتا رہے گا۔ کرتے کراتے خیر یہ کرنسیز آ گئی۔ کرنسیز بائی اینڈ لارج اس ٹائم کے اوپر پیکڈ تھیں ٹو دا گولڈ، یعنی کہ گولڈ کی قیمت کے عوض ایک سرٹن اماؤنٹ کرنسی کا تھا۔ لائک فار ایگزامپل ہم کہہ سکتے ہیں کہ یار ایک تولہ سونا 1,000 روپے کا تھا، تو 1,000 روپے کا آپ کو پتا ہے کہ ایک تولہ سونا ہی ہوگا۔ اب اس ٹائم تک اکانومیز بائی اینڈ لارج اسٹیبل تھیں، کوئی اتنی کوئی میسو گروتھ بھی نہیں ہو رہی تھی، اتنا کوئی میسو یہ بھی نہیں تھا کہ ایک دم سے اکانومی ڈاؤن ہو گئی، ایک دم سے اکانومی اپ ہو گئی، بس وہ جیسی تھی ویسی چل رہی تھی، سسٹم بس اوکے تھا۔ اب اس ٹائم کے اوپر امریکہ نے یہ شروع کیا، اس کے اوپر ایک پوری الگ ویڈیو میں بناؤں گا کہ کس طریقے سے امریکہ نے گولڈ کو اپنی کرنسی سے ہٹا کر کے پوری دنیا پہ کنٹرول بھی اپنا رکھا، اور بیسیکلی ان کی بھی اکانومی ایک کویک اکانومی ہے، لیکن وہ ایک پوری ویڈیو ہے الگ، مے بی اندر ڈے۔ پاکستان نے بھی ایگزیکٹلی یہی کیا کہ وہ حامل حضا کو مطالبہ پر سونا ادا کرنے کے بجائے سونا کٹ گیا، اور حامل حضا کو مطالبہ پر پتہ نہیں کیا ادا کرنے کا کانٹریکٹ آ گیا۔ نندلیس یہ ہے کیش، اور جیسا کہ میں نے آپ کو یہ پورا سسٹم سمجھایا ہے، تو جو ایکچوئل ویلیو ہے، اگر آپ سارا کیش نکال دیں، سارا گولڈ نکال دیں، تو ایکچوئل ویلیو یہ ہے کہ آپ کیا پروڈیوس کر رہے ہو، آپ کیا پروڈکٹیویٹی کر رہے ہو۔ مثلاً اگر پرانے انسان پہ چلے جائیں تو اس کی پروڈکٹیویٹی یہ تھی کہ وہ گندم اگاتا تھا، گندم اس کی ویلتھ تھی، گندم کو ایکسچینج کر کے وہ کوئی اور چیز خریدتا تھا۔ اس کی ویلتھ یہ نہیں تھی کہ یار وہ میجیکلی بس سونا بنا لیتا تھا اور وہ سونا جو ہے نا وہ بنتا رہتا تھا، ہمیشہ کوئی بھی چیز پیسہ بننے کے پیچھے یا ویلتھ بننے کے پیچھے کوئی نہ کوئی پروڈکٹیو چیز ہونا ضروری ہے۔ इसकी सबसे आसान मिसाल अगर पाकिस्तान में आपने समझना है तो वो है प्रॉपर्टी। देखिए प्रॉपर्टी में दो किस्म की प्रॉपर्टीज हैं, एक प्रॉपर्टी है जो आपके प्लॉट हैं, जो पूरा पाकिस्तान प्लॉटों के गेम खेलता है, यार प्लॉट ले लो प्लॉट ले लो प्लॉट ले लो, डबल हो जाएगा ट्रिपल हो जाएगा, फिर आप कहानियां भी तोड़ता है आपको कि यार मैंने वो 10 लाख का लिया था यार वो 40 लाख रुपए का हो गया। और दूसरी तरफ रियल एस्टेट के अंदर बिल्डिंग्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, घर हैं, जो कि एक डिफरेंट चीज़ है। अब घरों और अपार्टमेंट्स में क्या होता है, जब आप पैसा लगाते हैं तो उसके ऊपर मजदूर आते हैं, उसके ऊपर मटेरियल आता है, उसके ऊपर कमोडिटीज़ लगती हैं, वो तमाम चीज़ें लग के एक बिल्डिंग खड़ी होती है, बिल्डिंग के अंदर लोग आके रहते हैं, वहाँ पे लोग आके जब रहते हैं तो वो लोग अपने दफ्तरों के करीब होते हैं, उसकी वजह से उनको नौकरी करने में आसानी होती है, वो नौकरियाँ करते हैं, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। अब जो प्लॉटों की गेम है ना वो लार्जली एक कसिनो की तरह है, जिसके अंदर एक्चुअल में कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, उसके नीचे कुछ हो नहीं रहा, कोई इंसानी मेहनत नहीं लग रही, उससे कोई चीज़ आसान नहीं हो रही, बस सिर्फ और सिर्फ मुख्तलिफ लोगों का पैसा इकट्ठा हो रहा है गैम्बलिंग की तरह, और उसमें से कुछ लोग जीत जाते हैं जिनके प्लॉट डबल ट्रिपल क्वाड्रपल हो जाते हैं, राइट। सो ये मैं बारहा ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि प्रोडक्टिविटी एंड वैल्यू इज़ द अंडरलाइंग इंपॉर्टेंट थिंग। कैश रुपी डॉलर जिसके पीछे हम लगे रहते हैं कि यार हमारी किसी तरह पैसे डबल हो जाएं, ये हो जाए वो हो जाए, वो सब इररेलेवेंट है। ये आपकी अपनी ज़िंदगी में भी एप्लीकेबल है, ये पाकिस्तान की इकोनॉमी में भी एप्लीकेबल है। इवन हम अपनी ज़िंदगियों में हम कॉन्स्टेंटली ये सोचते रहते हैं कि यार मेरी तनख्वाह किस तरह बढ़ जाएगी, मेरी तनख्वाह किस तरह बढ़ जाएगी। सोचना ये चाहिए कि क्या मैं अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता हूँ, क्या मैं जो चीज़ कर रहा हूँ क्या उसकी वैल्यू है मार्केट में, क्या उसकी डिमांड है मार्केट में। अगर उसकी डिमांड है, अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्या मैं वो चीज़ कर सकता हूँ ताकि मैं ज़्यादा वैल्यूएबल हूँ, और जब मैं ज़्यादा वैल्यूएबल हूँ तो ऑटोमेटिकली मुझे ज़्यादा पैसे मिलेंगे। इसकी एक छोटी सी मिसाल इस तरह है कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था एक घर है, घर के अंदर बड़े डिफरेंट किस्म के कजन्स हैं। अब लेट्स अज्यूम कि हम कजन्स को 3 डिफरेंट सेट्स में डिवाइड करते हैं। एक सेट जो है वो बाहर गंदम लगाता है, सब्जियां लगाता है, मुर्गियां रखता है, गाय रखता है, उनको बड़ा करता है, ज़बा करता है, खाने के लिए लेकर आता है। दूसरा सेट जो है वो कपास लगाता है, कपास से धागे बनाता है, धागे बना के वो कपड़े बनाता है। तीसरा जो है वो बाहर मट्टी को उठा के उसको सुखा के ब्रिक्स बना के हर साल एक नई मंजिल घर पर ऐड कर देता है ताकि नए नए बच्चे जो पैदा हो रहे हैं उनके लिए जगह हो रहने की। रोटी कपड़ा मकान तीनों की तीनों करते हैं। इसके एवज उन सबको पैसे मिल रहे हैं और वो एक घर के अंदर इकोनॉमी है, उन्होंने उनकी लोकल एक सेंट्रल बैंक है जो उनका सरबराह है, वो पैसे एक्सचेंज करते हैं कि यार जो ईंटें बना के घर बना रहा है वो जाके पैसे देता है, और वो जो है ना मुर्गी अपने दूसरे कज़न से मुर्गी लेके खाना खाता है, फिर वो दूसरे को देता है, उससे वो कपड़े लेता है। इसी तरीके से एक लोकल इकोनॉमी चल रही है। अब मैं इसको स्विच करता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार अभी टेक्निकली मेहनत कर रहे हैं ना ये सारे के सारे, मैं एक और सिस्टम लेकर आता हूँ। मैं कहता हूँ कि यार अब ये सारे कजन्स जो हैं वो घर से बाहर नहीं निकलते, कोई बाहर जाके वो ब्रिक्स नहीं बनाते, कोई वो गाय को नहीं चराते, कोई वो कपड़े नहीं बनाते, ठीक है वो घर के अंदर लगे रहते हैं, लेकिन सुबह से शाम तक ना वो सारे के सारे कोई पोछा मारता रहता है, हर वक्त पोछा मार रहा है, जहाँ देखो पोछा मार रहा है, कोई जो है वो इधर से उधर भाग रहा है, देख रहा है, कह रहा है सब काम कर रहे हैं, मैं मैनेजर हूँ, मैं इन सबको देख रहा हूँ कि ये सब काम कर रहे हैं, काम पे लगे हुए या नहीं लगे हुए। तीसरा आता है वो सुबह से शाम तक जो है ना सबको जाके कानों में बता रहा होता है कि तुझे पता है वो ये कर रहा है, तुझे पता है वो कर रहा है, वो जी मीडिया बना पड़ा है, वो कह रहा है सबको बता रहा है सब क्या चल रहा है। फिर इसी तरीके से एक है वो आके ना डस्टिंग करता रहता है, वो हर वक्त कभी ऊपर डस्टिंग कर रहा है, कभी नीचे डस्टिंग कर रहा है, सुबह शुरू होता है रात तक आता है थक हार के, कहता है यार इतनी मेहनत की है, लेकिन महीने के आखिर में ना वो भूखे होते हैं, नंगे होते हैं, और उनका घर जो है वो ओवरक्राउडेड होता है, और वो कहते हैं यार इतनी हम मेहनत करते हैं, इतनी हम मेहनत करते हैं, और हमें कोई उसका सिला ही नहीं मिल रहा, शायद ये सरबराह जो है ना हमारा ये बेगैरत है कि ये जो है ना हमें कोई उसका सिला नहीं दे रहा, क्योंकि हमें तो समझ ही नहीं है कि सिला क्या होता है, हमें नहीं समझ कि खाना कहाँ से आता है, हमें नहीं समझ कपड़े कहाँ से आते हैं, हम तो मेहनत कर रहे हैं उसके एवज हमें पैसे भी मिल रहे हैं, लेकिन उस पैसे से हम कुछ ले ही नहीं पा रहे, हमारे पास तो ना खाना अवेलेबल है। आप देखें ना इकोसिस्टम छोटा सा है, बंद है, उस इकोसिस्टम में आप बाहर तो जा नहीं सकते, तो जब खाना प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा, जब कपड़े प्रोड्यूस ही नहीं हो रहे, जब घर प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा, तो आप पैसों को घुमाते रहें, 1.5 रुपये कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। अब इसमें समझाने का मकसद आपको क्या है, समझाने का मकसद ये है कि जस्ट बिकॉज यू आर डूइंग समथिंग इन योर लाइफ डज नॉट मीन यू आर वैल्यूएबल, जस्ट बिकॉज आपको उसके पैसे मिल रहे हैं डज नॉट मीन यू आर वैल्यूएबल, जस्ट बिकॉज आपको इस मुल्क के अंदर बहुत सारा पैसा है डजेंट मीन वी आर वैल्यूएबल। हमने चीज़ों को पैसों को हटा के देखना है, हमने आइडेंटिफाई करना है कि यार एक सेकेंड पैसा तो है लेकिन उससे जो काम हो रहा है क्या वो काम वैल्यूएबल है, क्या उससे लॉन्ग टर्म में हमें फ़ायदा होगा, या हम जो है वो अभी उस पैसे को निचोड़ रहे हैं और थोड़े अरसे बाद उसके अंडरलाइंग प्रोडक्टिविटी तबाह हो जाएगी, और फिर पैसा हो या ना हो क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जो चीज़ हमें चाहिए वो तो होगी नहीं। अब कंजम्पशन और प्रोडक्शन में फ़र्क क्या है, कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी भी होती है, प्रोडक्शन बेस्ड इकोनॉमी भी होती है। आपने शायद किसी से सुना हो कि यार पाकिस्तान एक कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है और उसी वजह से हमारी तबाही मची है, हमें एक प्रोडक्शन बेस्ड इकोनॉमी पर जाना है। दोनों में डिफरेंस ये है कि कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी क्या करती है कि वो पैसा देती है और उस पैसे से चीज़ों को कंज्यूम करती है, और कंज्यूम करके एक दफ़ा जब कंज्यूम हो जाए तो वो चीज़ गायब, अब आपको नया पैसा देना है और नई चीज़ खरीदनी है। वेयर एज प्रोडक्शन बेस्ड इकोनॉमी में अपना पैसा उधर लगाते हो जिस पैसे से आप नई चीज़ें बना सकते हो। तो आप बेसिकली प्रोडक्टिविटी के ऊपर इन्वेस्ट करते हो और उससे ओवर टाइम आप सस्टेनेबल हो जाते हो, क्योंकि अब आपके पास वो कैपेबिलिटी है कि आप खुद से इंडिजिनसली बना करके वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, वेल्थी हो सकते हो। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, अगेन एक सिंपल सी मिसाल है कि एक घर है, उसको जाके मैं 10,000 रुपये देता हूँ। अब वो 10,000 रुपये लेके मार्केट से आके गंदम भी ले सकता है, और जब वो गंदम लेगा तो उसका GDP ग्रोथ रेट आएगा कि यार देखो ये 10,000 रुपये इसने इस साल खर्च किए हैं, क्या ग्रोथ दिखाई है, ज़बरदस्त बेहतरीन हो गया। वो लोन लिया, लोन लेके 10,000 खर्च किए, 10,000 रुपये की ग्रोथ दिखा दी, कमाल हो गया। साल के आखिर में गंदम सारी ख़त्म। अब उसको अगले साल सर को जा रहा है कि यार मैं क्या करूँ, क्योंकि वो और कुछ कर ही नहीं रहा। वेर एज मैं फ्लिप करता हूँ, मैं कहता हूँ 10,000 रुपये लिया उसने, 10,000 रुपये लेके 1,000 रुपये का उसने जाके गंदम का दाना लिया, 3,000 रुपये का उसने जाके फर्टिलाइज़र लिया, 3,000 रुपये का जाके उसने कोई 4 मुर्गियाँ ले ली, यू नो आप उसका एक फलसफा बना लें, यू नो वेयर आई एम गेटिंग एट। और आपने वो ले करके आपने सारे घर वालों को काम पे लगा दिया कि यार तुम गंदम लगाना शुरू कर दो, तुम मुर्गियों का सिस्टम सेट करो, उसका दड़बा शड़बा बनाओ, तुम बाकी कुछ करो। और जैसे जैसे उन चीज़ों से चीज़ें आ रही थी, मुर्गी बन रही थी, गंदम निकल रही थी, वो आप आहिस्ता आहिस्ता कंज्यूम कर रहे थे। साल के आखिर में ग्रोथ रेट वही है जो पहले भी था, वही है, 10,000 रुपया था, 10,000 रुपया लगा, ठीक है। लेकिन अब जब आप अगले साल में एंटर हो रहे हैं तो अब आपको मजीद 10,000 रुपये नहीं चाहिए अपने खाने की नीड्स पूरी करने के लिए, आप सेल्फ सफिशिएंट हो चुके हो। पहले वाले ग्रोथ रेट के अंदर आपने एक दफ़ा ग्रोथ रेट शो किया, फिर मार्केट क्रैश की और आप ख़त्म हो गए। दूसरे वाले ग्रोथ रेट के अंदर आप सस्टेनेबल हो गए और आप एक सक्सेसफुल राह की तरफ गामजन हो गए। अगेन इसकी बहुत सारी मिसालें हैं पाकिस्तान के अंदर। एक मिसाल मैं आपको देता हूँ, मुशर्रफ साहब ने उठा के गैस को पूरी कौम को देना शुरू कर दिया कि यार CNG लगाओ गैस करो। अब पाकिस्तान की इंडिजिनस रिसोर्स थी, सस्ती रिसोर्स थी, उसको हमें यूज़ करना चाहिए था प्रोडक्टिव एरियाज़ में। गाड़ी में गैस लगा के चलाना प्रोडक्टिव नहीं था, वो कंजम्पशन था। यानी कि आप अपनी अय्याशी के लिए गाड़ी में जा रहे हो उधर सफ़र करके सस्ते में, आप बस से भी ट्रैवल कर सकते हो, आप बाइक पे भी जा सकते हो, नहीं लेकिन आपको गाड़ी चाहिए, आपने अय्याशी में जाना है, राइट। वेयर एज वही गैस अगर हम जाते और हम जाके फैक्ट्रियों को देते कि यार तुम माल जो बना रहे हो तुम सस्ती गैस लेके बनाओ और तुम बाहर एक्सपोर्ट करो, या बिजली घरों को देते कि यार तुम इससे बिजली सस्ती बनाओ ताकि वो सस्ती बिजली जो है वो कारखाने इस्तेमाल करें, आप ये सोचते हैं कि यार मैं अपनी प्रोडक्शन को किस तरीके से स्ट्रीमलाइन करूं, सस्ता करूं, ताकि उससे हमारी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी स्ट्रांग हो और लॉन्ग टर्म पे हमारे मुल्क के अंदर वेल्थ ऑटोमेटिकली आए बाय बाइंग एंड सेलिंग थिंग्स। लेकिन नहीं हुआ ऐसा, और हमने देखा कि हम उसके बाद एक अजीब रट में फंसे रहे। ये हर दफ़ा ऐसे ही हुआ है, हर गवर्नमेंट में आप देखते हैं गवर्नमेंट आती है, आके पॉलिसी आती है, किसी तरह करते कराते आपको 6% 5% ग्रोथ रेट दिखाती है, और फिर उसके 2-1 साल में एकदम से मार्केट क्रैश करती है और वो कहते हैं यार हम तो बड़े ज़बरदस्त थे, अगला वाला मार गया। एक्चुअल में सर आप ज़बरदस्त नहीं थे, आपने चूना लगाया था। सबसे आसान काम ये है, इधर से कर्जा लो, डॉलर को कंट्रोल करो, सस्ती गाड़ियाँ मंगवाओ, सस्ती चीज़ें मंगवाओ, और ये इमेजिन करो कि यार देखो ग्रोथ रेट बड़ी ज़बरदस्त है, क्योंकि अगेन घर का सरबराह जो है वो चूना लगा रहा है बैठा हुआ आपको। वेर एज जब आप प्रोडक्टिविटी फोकस्ड होते हो, प्रोडक्शन फोकस्ड होते हो, वो लॉन्ग टर्म काम है, उसमें मेहनत लगती है, वो इतना शाइनी नहीं होता, उसमें बड़ी बड़ी रोडें नहीं बन जाती, उसमें फोकस इस चीज़ के ऊपर होता है कि यार क्या हम ऐसा कर सकते हैं जिससे एक्चुअल में लॉन्ग टर्म में हमें फ़ायदा होगा। इंसान फितरी तौर पे ऐसा है कि उसको फ़ौरन रिटर्न चाहिए होता है। आपके घर में आपको कोई आके बोलेगा कि यार मेरे पास एक स्कीम है, जिस स्कीम के अंदर आप जो है ना ये पोल्ट्री फार्म है इसमें टाइम तो तुम्हें थोड़ा सा टाइम लगेगा तुम्हारा, और 10,00,000 रुपये इन्वेस्ट करो, आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें साल का ना कभी पहले 10,000-12,000 रिटर्न आ जाएगा, फिर ओवर द 10-year पीरियड तुम इतना पैसा बना लोगे। आप कहोगे यार 10,000 रुपये मुझे नहीं 10,000 रुपये चाहिए, आपका दोस्त आपको साथ ही कॉल करेगा कहेगा यार 10,00,000 रुपये डाल महीने का 40,000 मिलेगा। आप सोचे समझे बगैर कहोगे यार भाई ऑब्वियस सी बात है मुझे तो घर का खर्चा चलाना है ना, मुझे किसी तरह ऐसे करना है। हर किसी के दिमाग में ये होता है यार मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ कि मुझे इतने पैसे मिल जाएं कि कुछ किए बगैर मेरी ज़िंदगी चल जाए, मेरी रिटायरमेंट हो जाए, यू नो एक अय्याशी। अब वहाँ पर यही प्रॉब्लम है, यही हमारी सोच का प्रॉब्लम है, यही हमारे हुक्मरानों की सोच का प्रॉब्लम है कि हम कॉन्स्टेंटली अरबियों को देखते रहते हैं कि यार वो देखो उनका तेल निकला है ना, जो अय्याशी उनकी है वो अय्याशी हमारी क्यों नहीं है। ओ भाई पूरी दुनिया में जो इकोनॉमीज़ ग्रो की हैं, खासकर हमारी जैसी इकोनॉमीज़ जिनकी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, बहुत यंग पॉपुलेशन है, वो प्रोडक्टिविटी पे ग्रो की हैं। पैसे को भूल जाए, पैसा किस तरह बनेगा, पैसा किस तरह डबल होगा, प्रोडक्टिविटी मुझे बताएं एक्चुअल में लोग कितने प्रोडक्टिव हैं। जो मैंने आपको स्टार्ट की मिसाल दी थी कि लड़के सारे पोछा मार रहे हैं, मेहनत आई एम श्योर बहुत पाकिस्तानी कर रहा है, लेकिन क्या वो मेहनत प्रोडक्टिव है, क्या वो मेहनत एक्चुअल में कोई वैल्यू प्रोड्यूस कर रही है, या वो मेहनत इसी पोछा मारने की तरह है जिससे जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो रही। आप जो अपनी नौकरी ढूंढ रहे हैं, आप जो अपना काम ढूंढ रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मैंने आने वाली ज़िंदगी में क्या करना है, क्या आप ये सोच रहे हैं कि यार पैसा, मुझे लोग बड़े सारे मैसेज करते हैं कहते हैं मुजम्मिल भाई मुझे बताएं कि कौन सा ऐसा प्रोफेशन है जिससे पैसे बड़े बनेंगे। मैं कहता हूँ यार ये किस किस्म की बात है, पैसा प्रोफेशन तो डिफाइन नहीं करता, मुझे क्या पता 4 साल बाद उस प्रोफेशन की क्या डिमांड होगी। इंसानियत तो किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के बस डिमांड कैसे बनेगी, उस डिमांड से मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ जिससे मैं वो रिक्वायरमेंट को सॉल्व कर सकूँ। अगर मैं वो रिक्वायरमेंट को सॉल्व कर रहा हूँ, अच्छे से कर रहा हूँ, कम टाइम में कर रहा हूँ, तो सर उसको पैसे में कन्वर्ट करना बहुत आसान है। सो सिमिलरली वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी जब आप देख रहे हैं तो आपने वैल्यू की लेंस में देखना है, आपने पैसे की लेंस में नहीं देखना। और जो वैनिटी मेट्रिक आपको आके सियासतदान सिखाता है ना कि देखो सस्ता सस्ता डॉलर, सस्ता पेट्रोल, सस्ता ये सस्ता वो, आपने उस दौड़ से बाहर निकलना है और आपने प्रोडक्टिविटी की बात करनी है, आपने प्रोडक्शन की बात करनी है, आपने एक्चुअली देखना है कि यार पाकिस्तान दुनिया को देता क्या है। वेरी ऑनेस्टली पाकिस्तान दुनिया को देता क्या है कितने कपड़े देता है, मतलब मुझे नहीं फर्क पड़ता कितने के बेचता है, मैं कह रहा हूँ कितने टन कपड़े बेचता है, कितना टन सरिया बनाता है, कितने मेगावाट बिजली बनाता है। पीछे जाएं, कैश के पीछे जाएं, अंडरलाइंग जो एक्चुअल प्रोड्यूस है, उस प्रोड्यूस से आपको एक इकोनॉमी की वेल्थ समझ आएगी, उस प्रोड्यूस से आपको समझ आएगी कि इकोनॉमी क्या सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जा रही है या फंसी पड़ी है। अब जब मैंने आपको ये समझाया ना तो आपको समझ आ गई होगी कि जब हम डॉलर की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि यार डॉलर का रेट ये तो डॉलर का रेट वो, तो अगर आप रुपए को दो मिनट साइड पर रख देना तो डॉलर का रेट बाय एंड लार्ज आपकी प्रोडक्टिविटी पे डिपेंडेंट है, आप कितना प्रोड्यूस करके दुनिया को दे रहे हो और उससे आप कितना खरीदना चाहते हो। डॉलर तो रिप्रेजेंट करता है सिर्फ और सिर्फ उस एक्सचेंज को, लेकिन एक्चुअल में अगर आप बार्टर वाली मेंटेलिटी से आओ तो यार अगर मैं 1,00,000 कपड़े सालाना दुनिया को देता हूँ ना तो मुझे शायद उसके इवज ही चीज़ें वापस मिल सकती हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ डॉलर का रेट क्या है। सो अगर मैं अपने कपड़ों की पैदावार नहीं बढ़ा रहा तो मैं कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं एक्सपेक्ट कर सकता। जब तक मेरी एक्सपोर्ट की पैदावार नहीं बढ़ेगी मैं मजीद चीज़ें नहीं खरीद सकता। अब मसला क्या है, मसला ये है कि आपकी पॉपुलेशन बढ़ी जा रही है, पॉपुलेशन एजुकेट भी हो रही है, पॉपुलेशन की डिमांड्स भी बढ़ रही हैं और जैसे जैसे डिमांड्स बढ़ रही हैं वैसे वैसे उनकी इम्पोर्ट की रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है। तो जाहिर सी बात है डिमांड ज़्यादा सप्लाई कम, ऑटोमेटिकली डॉलर के रेट ने तो बढ़ना ही बढ़ना है। अब अगर आप पिछले 30 साल के डॉलर के रेट को उठाएं और उसका बेसिक सा एनालिसिस करें तो आपको एक बात बेसिक सी समझ आ जाएगी कि यार आप कुछ भी पट लो ना, कुछ भी पट लो, लेफ्ट राइट के वेरिएबल्स को मद्देनजर रखते हुए 7-9% डॉलर ने हर साल डेप्रिशिएट होना ही होना है। अब इसके ऊपर आप सियासतदानों को गालियां देना बंद करें, आपको पता है ये आपके मुल्क का मसला है, आपकी प्रोडक्टिविटी का मसला है, आप एक अंडर डेवलप्ड इकॉनमी है, वो एक डेवलप्ड इकॉनमी है, डॉलर के रेट में डिफरेंस आएगा। अब बजाय इसके कि हम इसके ऊपर शो डालें जिसकी वजह से सियासतदान जो है वो डॉलर के रेट को कंट्रोल करता है, फिर मार्केट में पंप एंड डंप आता है, फिर वो बूम एंड बस्ट आता है, ओ भाई डॉलर बढ़ेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने तो पैदावार पे फोकस करना है ना, हमने इस पे फोकस करना है कि मैं कितना बना रहा हूँ और मैं कितना खरीद रहा हूँ। मुझे इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि डॉलर का रेट 1,000 रुपये हो या 5,000 रुपये हो या 10,000 रुपये हो, मुझे इससे फ़र्क पड़ता है कि मेरी कुव्वत खरीद कितनी है, मेरी प्रोडक्टिविटी कितनी है और उससे मैं कितनी चीज़ों को खरीद सकता हूँ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना कुव्वत खरीद, क्योंकि कुव्वत खरीद ये होती है, फॉर एग्जांपल मैं इसको बिल्कुल बेसिक सा ब्रेक डाउन करता हूँ, लेट्स अज्यूम 100 रुपये आपके पास, 100 रुपये में 10 रुपये की डबल रोटी आती है, ठीक है, और 90 रुपये का बाकी एक्स वाई जी जो भी चीज़ें आती हैं। अब मैं कहता हूँ अगले साल कुछ सिस्टम ऐसा हुआ, आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई, सारा कुछ हुआ, और मीनवाइल कैश की मैनेजमेंट जिसके ऊपर हम आएंगे, कैश की मैनेजमेंट ऐसी हुई कि जो डबल रोटी है उसकी प्राइस डबल होगी, 20 रुपये होगी, और आपकी तनख्वाह जो है वो 400 रुपये होगी। अब आप सोच रहे हैं यार कितनी महंगाई हो गई है, 100% डबल हो गई डबल रोटी की प्राइस, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है, पहले आप 100 में से 10% यानी कि अपनी तनख्वाह में से 10% आप डबल रोटी पर खर्च कर रहे थे, अब आप अपनी तनख्वाह में से 5% डबल रोटी पर खर्च कर रहे हैं, तो एक्चुअल में क्या हुआ, एक्चुअल में डबल रोटी सस्ती हुई, पैसा जो ओवरऑल मार्केट में है वो चेंज हुआ। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ ये पैसा ना ये नंबर जैसे हैं आपको समझ नहीं आएगी, अगर आप उस पर बैठ के देखना शुरू कर देंगे कि यार ये क्या सिस्टम चल रहा है, तो वो बड़ों ने ऐसा सिस्टम डिज़ाइन किया हुआ है कि आपको कभी समझ ही ना आए, आप बेवकूफ़ बनते रहो, आप फुद्दू लगते रहो, और वो अगेन मैं आपको बताऊंगा किस तरह आप फुद्दू लग रहे हो। हर बंदा इस मुल्क के अंदर वो कहते हैं पाकिस्तान में पाकिस्तानी टैक्स नहीं देता, पाकिस्तान में हर पाकिस्तानी मंडो मन टैक्स देता है, क्योंकि टैक्स उसने वन वे और दिया देना ही देना है। खैर एनीवेज इसके ऊपर हम आते हैं, सो पॉइंट बीइंग कि डॉलर के रेट से फ़र्क नहीं पड़ता, प्रोडक्टिविटी से फ़र्क पड़ता है। डॉलर का रेट 500 भी हो सकता है, 800 भी हो सकता है, लेकिन आपके पास अपने कैश इन हैंड कितना है, मतलब अगर मेरे पास 1,00,000 रुपये और डॉलर 100 रुपये का है, इसका मतलब है कि मैं महाना 1,000 डॉलर का काम करता हूँ, लेकिन अगर डॉलर 200 रुपये है और मेरी तनख्वाह 4,00,000 रुपये है तो इसका मतलब है मैं 2,000 डॉलर का काम करता हूँ। इस डिफरेंस को हमने आइडेंटिफाई करना है, हमने अपनी प्रोडक्टिविटी को आइडेंटिफाई करना है, हमने ये देखना है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि डॉलर की प्राइस क्या है क्या नहीं है, हमने अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाना है। खैर IMF प्रोजेक्ट कर रहा है कि जो डॉलर की रियल वैल्यू है बाय जून वो 311-312 है, तो अगेन डॉलर 300 रुपये क्रॉस करेगा, 312-313 पे जाएगा, उससे थोड़े से शॉर्ट टर्म पे मुश्किलात आएंगे, चीज़ें महंगी होंगी, पर हमें डॉलर को अब अपने रेट पे रहना देना चाहिए है और हमें फोकस इस चीज़ पे करना चाहिए कि हम अपनी पैदावार अपनी प्रोडक्टिविटी किस तरह बढ़ा सकते हैं, हम अपने आप को एक्सपोर्ट सेंट्रिक किस तरह कर सकते हैं, हम अपने आप को एक कंजम्पशन इकोनॉमी से प्रोडक्शन इकोनॉमी किस तरह कर सकते हैं। अब इसमें ये याद रखें कि प्राइस ऑफ डॉलर जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक तो डिमांड एंड सप्लाई है आपकी कि यार हम कितना बना रहे हैं और कितना बेच रहे हैं, एक उस पर डिपेंडेंट है। लेकिन एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और वो ये है कि यार अगर मार्केट में एक लाख रुपया अवेलेबल है और $1,000 अवेलेबल है जिसमें ₹1,00,000 ने $1,000 को चेस करना है तो हर डॉलर की वैल्यू ₹100 होगी। लेकिन अगर मैं कुछ करता हूँ और मैं मार्केट में रुपया प्रिंट करके मैं ₹4,00,000 मार्केट में रख देता हूँ और वो ₹4,00,000 $1,000 को चेस कर रहा है तो आप बताएं डॉलर की क्या वैल्यू होगी? ऑब्वियस सी बात है ₹400 का डॉलर होगा क्योंकि जो खरीदार है उसने सिर्फ उस पैसे से सिर्फ डॉलर खरीदना है तो वो कहेगा कि यार मुझे वो डॉलर चाहिए। तो वो डॉलर की जो वैल्यू क्रिएट करेगा वो जाहिर है कि जब आपने कैश को ही 4x डबल कर दिया PKR में तो डॉलर की वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। अब पाकिस्तान में जो रिसेंटली डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है उसमें सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई का प्रॉब्लम नहीं है, उसमें एक मेजर रीजन ये भी है कि हम कॉन्स्टेंटली बहुत ज़्यादा अंधाधुन कैश प्रिंट कर रहे हैं। अब आप ये अंदाज़ा लगाएं कि पिछले 4 साल में 2020 में आपकी टोटल मनी सप्लाई जो PKR की पाकिस्तान रुपीज़ की मनी सप्लाई पाकिस्तान में थी वो तकरीबन लगभग 18 ट्रिलियन थी। आज वही मनी सप्लाई लगभग 36 ट्रिलियन है, यानी कि पिछले 4 साल के अंदर आपने अपनी जो लोकल इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई है उसको डबल किया है, आपने डबल किया है उस मनी सप्लाई को। अब आप ऑनेस्ट टू गॉड अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के बताएं क्या पाकिस्तान में प्रोडक्टिविटी डबल हुई है? क्या जो हम प्रोड्यूस कर रहे थे वो क्या डबल हुआ है? क्या हमारी मुर्गियाँ डबल हो गई हैं? क्या हमारी गंदम डबल हो गई है? क्या हमारे कपड़े डबल हो गए हैं? क्या हमारे यहाँ घर डबल होकर बनना शुरू हो गए हैं? या हमारी प्रोडक्टिविटी तो वही है, हमने बस कैश को डबल कर लिया। और अगर हमने कैश को डबल कर लिया और मार्केट में जो 40-40% इन्फ्लेशन हो रही है तो आपको समझ आना शुरू हो जाती है कि यार जाहिर सी बात है इन्फ्लेशन आपकी जो है वो मनी प्रिंटिंग से हो रही है। आप अंधाधुन मनी प्रिंट करी जा रहे हैं, उससे मार्केट में जब एक फाइनाइट अमाउंट ऑफ रिसोर्स है, पैसा आपके लोगों के हाथों में आ रहा है, वो पैसा जब जाके मार्केट में वो लगा रहे हैं तो हाई डिमांड लो सप्लाई, लॉजिकली द प्राइसेस विल इंक्रीज, बेसिक इकोनॉमी 101। अब मनी सप्लाई बढ़ रही है इसका क्या मतलब है? अभी एक बड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, मैं इसको अगर सिंप्लीफाई करके आपको बता सकूं तो होता यह है कि स्टेट बैंक पैसे प्रिंट करता है, स्टेट बैंक जब वो पैसे प्रिंट कर देता है गवर्नमेंट वो पैसा लोन लेती है थ्रू बैंक्स जिसको वो फिर इस्तेमाल करती है अपनी स्पेंडिंग के अंदर, और फिर जब वो अपनी स्पेंडिंग करती है गवर्नमेंट वो पैसा स्पेंड करती है तो फिर वो इवेंचुअली लोगों के हाथों में आ जाता है। अब इस वक्त हो क्या रहा है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, कोई प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट के करीब करीब भी नहीं आता। अब एज अ कॉर्पोरेट एंटिटी अगर आप गवर्नमेंट को इमेजिन करें तो उसकी कुछ कॉस्ट्स हैं, उसके कुछ रेवेन्यूज हैं, उसके हिसाब से प्रॉफिट्स होंगे, राइट? अब गवर्नमेंट की कॉस्ट क्या है, गवर्नमेंट सर्विसेज देती है आपको, अस्पताल, स्कूल, रोडें, डेवलपमेंट, अपने खर्चे, मिनिस्ट्रियां चलानी, फॉरेन अफेयर्स चलाना, पूरी दुनिया में आगे पीछे घूमना फिरना, व्हाटएवर, वो सारे खर्चे गवर्नमेंट के वो कॉस्ट में आ गए। रेवेन्यू गवर्नमेंट का क्या है, गवर्नमेंट की कुछ कंपनीज हैं जैसा कि आपको पता है OGDCL हो गया, PIA हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उनके रेवेन्यू से आता है, मेजॉरिटी ऑफ दोज कंपनीज आर ऑलरेडी इन लॉसेज तो वहाँ से भी आपको प्रॉफिटेबिलिटी कोई नहीं आ रही। दूसरा सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है जी, आप टैक्स देते हैं। सो जो टैक्स आप देते हैं सुबह शाम, आप अपने इंपोर्ट्स पर टैक्स देते हैं, आप अपनी इनकम पर टैक्स देते हैं, आप अपने खरीदारी के वक्त जनरल सेल्स टैक्स देते हैं, इन तमाम टैक्सेस को यूज़ करके गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। अब गवर्नमेंट इज अ सेंट्रल अथॉरिटी जो कि लोकल इकोनॉमी की करेंसी को मैनेज करती है। पूरी करेंसी की मैनेजमेंट बाय एंड लार्ज गवर्नमेंट की पॉलिसी से डिफाइन होता है कि हमारी करेंसी कैसी होगी, करेंसी प्रिंट होगी कि नहीं होगी, करेंसी किन टारगेट एरियाज में लग रही है, क्या वो कंजम्पशन बेस पे लग रही है, प्रोडक्शन बेस पे लग रही है, क्या प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट पे लग रही है, क्या पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट पे लग रही है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। पाकिस्तान में इस वक्त ये सूरत हाल है कि गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है ना, जो गवर्नमेंट सारा पैसा इकट्ठा करती है, वो सारा पैसा इस वक्त लोन्स के इंटरेस्ट पेमेंट्स पे जाता है। इसको एक दफा फिर से समझें, गवर्नमेंट का सारा पैसा लोन की इंटरेस्ट पेमेंट्स पे जाता है, यानी कि अस्पतालों को, पुलिस को, असाध्या को, मिनिस्ट्रीज को, इदारों को पैसे जो देने हैं हर साल, वो कहाँ से आते हैं? वो पैसे तो है ही नहीं गवर्नमेंट के पास। जिसकी छोटी सी मिसाल ये है कि लास्ट जुलाई में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इंटरेस्ट की मद में 537 बिलियन रुपीज़ देने थे और उनकी जो इनकम थी वो 381 बिलियन थी, यानी कि इवन इंटरेस्ट के पैसे पूरे नहीं हो रहे थे, बाकी तो खर्चे आप दूर की बात है। अब ये इस साइकिल में हो क्या रहा है? अब देखें, लॉजिकली समझें, आपको यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट की समझ आएगी। गवर्नमेंट ने सुबह शाम काम करना है भाई, आपके पुलिस वाले को तनख्वाहें मिल रही है, आपके आर्मी अफसर को तनख्वाहें मिल रही है, आपके अस्पतालों में डॉक्टरों को तनख्वाहें मिल रही है। अब आम आदमी अपने फ्लो में वो कह रहा है यार मेरी तनख्वाह आ जाती है, कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप सोर्स पे देख रहे हैं ना, तो सोर्स पे एक बहुत बहुत परेशान कुन सूरत हाल डेवलप कर रही है जो कि बहुत मुख्तलिफ कंट्रीज में रिसेंटली की है, जैसे कि वेनेजुएला, इजिप्ट, लेबनान वगैरह वगैरह। अब इसमें हम कॉन्स्टेंटली डॉलर को देखते रहते हैं, हम कहते हैं पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा क्योंकि डॉलर नहीं है हमारे पास। सर, एक लोकल भी बहुत बड़ा क्राइसिस खड़ा हो रहा है और उस क्राइसिस में ये हो रहा है, गवर्नमेंट ने इतना ज्यादा कर्जा ले लिया हुआ है कि उन्होंने वो कर्जा वापस करना है, उन्होंने तनख्वाहें भी देनी है, तो वो एक दलदल में है, वो जाएंगे और जाके अब मजीद कर्जा लेंगे और फिर वो मजीद कर्जा लेंगे और फिर वो मजीद कर्जा लेंगे ताकि वो अपने कर्जे की पेमेंट्स निकाल सकें, ताकि वो तनख्वाहें दे सकें। होगा क्या कि जो आपकी मनी सप्लाई है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैंने आपको बेसिक सा बता दिया, तनख्वाहें जानी है, इंटरेस्ट पेमेंट्स जानी है, लोन्स जाने हैं, पेंशन जानी है, सारा कुछ जो 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 खर्चे होते हैं ना वो जाने जाने, उसका आप ये नहीं कर सकते कि यार इसको मैंने नहीं दिया उसको नहीं दिया। जैसे ही देना, जैसे ही आपने कटाना शुरू किया, क्राइसिस खड़ा हो जाएगा। तो जब आप डेस्परेटली सबको आपने मैनेज करना है तो आप लोन्स लेना शुरू कर देंगे, गवर्नमेंट लोन्स लेगी। इस वक्त हालात ऐसे हैं, महंगाई इतनी ज्यादा है कि आप टैक्सेस बढ़ा नहीं सकते। आप मैक्सिमम भी बढ़ा दोगे तो कितने बढ़ा दोगे? आपके ऊपर लोन इतने ज्यादा पड़ चुके हैं कि अब आप किसी ना किसी तरीके से या तो आप डिफॉल्ट करो लोकल डेट के ऊपर। आपका पूरा का पूरा सिस्टम एक ड्रग एडिक्ट की तरह चल रहा है। बैंक्स जो है ना पाकिस्तान में, वो 90% अपना पैसा गवर्नमेंट को लोन करते हैं। पूरी दुनिया में बैंक्स प्राइवेट सेक्टर को लोन देते हैं, वहां से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। हमारे यहाँ गवर्नमेंट एक इंतहा ज्यादा अनप्रोडक्टिव इदारा है जिसके अंदर फालतू के लोग बैठे हुए हैं और वो प्रोडक्टिव नहीं है। वो तनख्वाहें ले रहे हैं लेकिन वो प्रोडक्टिव नहीं है। हम उस अनप्रोडक्टिव ऑर्गेनाइजेशन को पूरे पाकिस्तानियों का पैसा लोन की मद में देते हैं और उस पैसे को वो फिर इवेंचुअली मार्केट में फेंकते हैं, और जिसकी वजह से मनी सर्कुलेशन बढ़ रही है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ेगी और बढ़ती रहेगी। मेरा जो खदशा है वो ये है कि अगर इस तरह सिचुएशन चलती रही तो हम हाइपर इन्फ्लेशन की तरफ जाएंगे। अगेन, ये कोई अनोखी बात नहीं है, ये मुख्तलिफ कंट्रीज़ में रिसेंटली ऐसा ही हुआ है, लेबनान में, वेनेजुएला में, जहाँ पर गवर्नमेंट्स का जब सिस्टम आउट हुआ ना तो वो एक गंदा सा साइकिल हो गया। साइकिल क्या था? पैसा प्रिंट करो, मार्केट में फेंको, ज़्यादा पैसे से ज़्यादा इन्फ्लेशन, ज़्यादा इन्फ्लेशन से महंगाई, महंगाई से लोगों की डिमांड होगी कि यार हमें अब वारा नहीं खा रहा, मज़ीद पैसे चाहिए, तनख्वाहें बढ़ाओ, मज़ीद पैसा प्रिंट करो, मज़ीद मार्केट में फेंको, एंड सो कॉन्स्टेंटली उधर से पैसे की वॉल्यूम बढ़ती रहेगी, इधर से महंगाई बढ़ती रहेगी, और वो एक दूसरे को फीड करते 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 पता लगता जी हाइपर इन्फ्लेशन, जिसमें आपका एक हफ्ते अगर 20 रुपये की डबल रोटी है, अगले हफ्ते 40 रुपये की है, उससे अगले हफ्ते 60 रुपये की है, उससे अगले हफ्ते 100 रुपये की है। इस तरह की सिचुएशन हमने बहुत रिसेंट हिस्ट्री में डिफरेंट कंट्रीज़ की देखी हैं। अब मैं डराना नहीं चाह रहा, मैं कोई फेयर मॉन्गरिंग नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये एक्चुअल रियलिटी है। इस रियलिटी से अगर हमने निकलना है ना तो हम एंटाइटल्ड ब्रैट्स नहीं बन सकते। मतलब कि हम बस गवर्नमेंट से कह रहे हैं सस्ती बिजली दो, सस्ती गैस दो, सस्ता डॉलर दो, सस्ता ये दो, सस्ता वो दो। इस दलदल से अगर हमने निकलना है ना तो हमें कुछ चीज़ें बेसिक करनी है। हमें समझना होगा कि यार अगर ये मसाइल है ना पाकिस्तान के जो हम सबको इम्पैक्ट करेंगे, तो इसका मतलब है कि हमें टैक्स बढ़ाना है। बहुत सीरियस बात है, बहुत अनफॉर्चुनेट बात है, क्योंकि हमारे लोगों को नहीं शौक। लोग कहते हैं जी हम तो टैक्स देते हैं, हम तो कभी GST देते हैं तो कभी ये देते हैं वो देते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ओवरऑल एक्चुअल में, मैं एशिया की बात करूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि यार यूरोप में देखो इतना टैक्स है। एशिया में ऑन एवरेज 20% ऑफ द GDP गोज इन टैक्सेस, वेयर एज इन पाकिस्तान ओनली 10% ऑफ द GDP गोज इन टैक्सेस, राइट? सो हमें अपने उस नंबर को डबल करना है सबसे पहला। अब वो जाहिर है ऑप्टिमाइजेशन है उसके ऊपर गवर्नमेंट की, कि वो ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करे जिसमें गरीबों को सहूलत मिले, जिसमें ज्यादा इक्विटेबल टैक्सेशन हो। लेकिन टैक्स ओवरऑल बढ़ना है और ये आने वाले वक्त में हमें नजर आएगा, और इसकी वजह से हमें उसके ऊपर शोर जनरली नहीं मचाना चाहिए है। अच्छा, दूसरा फिर हम लॉस मेकिंग जो एंटिटीज़ हैं उनको हमने कटाना होगा। हम गवर्नमेंट नहीं अफोर्ड कर सकती, हमें जो जो इदारा अगर लॉस बना रहा है तो उसको कटा के आपने साइड पे करना है। तीसरा, गवर्नमेंट का साइज़ देखें। अब हमें प्रोडक्टिविटी के हिसाब से सोचना होगा। 25-25-30 हज़ार बंदा एक मिनिस्ट्री में क्या कर रहा है, वो क्या आउटकम जनरेट कर रहा है? आपने आउटकम के हिसाब से कॉस्ट निकालनी होगी, और उसमें अगर लोग फायर होते हैं तो वो फायर होंगे। हमारा मसला ये है कि चूंकि हम इकोनॉमी को नहीं समझते तो हम बस हर एस्पेक्ट पे कहते हैं कि यार हम कॉन्स्टेंटली हाथ बांध देते हैं। हम कहते हैं यार बंदे भी ना फायर करो, इदारे को भी ना बेचो, ये भी ना करो, वो भी ना करो, वो भी ना करो, और फिर मुझे बताओ कि किसी तरीके से सिस्टम अच्छा हो जाए। अगेन स्टार्ट की घर की मिसाल, वो पोछा मार रहा, वो छलांगे लगा रहा, वो लैप्स कर रहा, और फिर कह रहा है अपने सरबराह को कि यार भूख लग रही है, खाना किधर है? ओ यार खाना बनाओगे तो आएगा ना, प्रोडक्टिविटी लाओगे तो वेल्थ इंक्रीज होगी। सो अब वो वाले रेडिकल रिफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट है, जिसमें आपने गवर्नमेंट का साइज कट करना है क्योंकि वो कॉस्ट में आ जाता है, जिसमें आपने इन सर्टन एरिया सब्सिडीज खत्म करनी है क्योंकि अगेन वो कॉस्ट में आ जाता है, आपने अपनी गवर्नमेंट ने कॉस्ट कम करनी है, गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ाने हैं क्योंकि और कोई चारा नहीं है, वरना आप हाइपर इन्फ्लेशन में जाओगे। जो मैंने थोड़ी देर पहले एक तस्करा किया था, मैंने कहा था गवर्नमेंट आपसे वन वे और द अदर टैक्स लेती लेती है। अब अगर आप फॉर एग्जाम्पल टैक्स नहीं दोगे ना, ठीक है, तो गवर्नमेंट अपने खर्चे पूरे करने हैं। गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट मनी प्रिंटिंग करेगी, मनी प्रिंटिंग करेगी। फॉर एग्जांपल आपने 17% टैक्स देना था, आपने नहीं दिया, गवर्नमेंट 17% एक्स्ट्रा कैश प्रिंट करके लेगी, उसको मार्केट में फेंकेगी, 17% इन्फ्लेशन होगी। मैं बिल्कुल डम तरीके से बता रहा हूँ, इट्स अ लिटिल मोर कॉम्प्लेक्स देन दैट, बट वो 17% इन्फ्लेशन होगी। आपका जो पैसा था ना, जो आपने 17% नहीं दिया वहाँ पर, वो अब मार्केट ही महंगी हो गई है। अब आपका पैसा उधर ही है लेकिन उसकी कुव्वत खरीद कम हो गई है। तो आप टैक्स होते हो सर, वन वे और दी अदर आप टैक्स होते हो, या आप डायरेक्टली टैक्स दे दो जो कि ऑप्टिमाइज्ड है, एफिशिएंट है, टारगेटेड है, या आप ना दो टैक्स और पूरी इकोनॉमी एज अ होल अपनी वैल्यू लूज करें। खैर यहाँ पर मैं ख़त्म करता हूँ। आज हमने समझा कि कैश क्या होता है। कैश इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैल्यू, कैश इट सेल्फ होल्ड्स नो वैल्यू व्हाटसोएवर। कैश को किस तरीके से फनी इकोनॉमिक्स के थ्रू गवर्नमेंट्स जो हैं वो जलील कर रही हैं बैठी हुई, और पीछे सर्टन पॉलिसी डिसीजंस ऐसे हो रहे हैं जिससे कैश की वैल्यू कंटिन्यूअसली कम होती जा रही है। एंड सो हमने अपनी सोच में कैश से हटके अब वैल्यू बेस पे जाना है, प्रोडक्टिविटी बेस पे जाना है। एज लॉन्ग एज हम उस पर रहेंगे, आगे जो भी हो, जैसा भी सिस्टम हो, हमारा सिस्टम चलता रहेगा, आगे हमें उससे 1.5 रुपए का फर्क नहीं पड़ेगा। इसी के साथ साथ मैंने आपको बता दिया कि हाइपर इन्फ्लेशन के बड़े रियल रिस्क हैं इस वक्त पाकिस्तान को, तो हमें बहुत रेडिकल रिफॉर्म्स की जरूरत है। अगर वो नहीं आए तो फिर या हम डिफॉल्ट करेंगे या हम हाइपर इन्फ्लेशन में जाएंगे, और कोई चारा नहीं है। साथ ही हमने थोड़ा सा कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी और प्रोडक्शन बेस्ड इकोनॉमी को भी समझ लिया कि कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी वो है जिसमें हम चीज़ों को इम्पोर्ट कर रहे हैं, खा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, और प्रोडक्शन बेस्ड इकोनॉमी वो है जिसमें हम मशीनरी मंगवा रहे हैं, जिसमें हम रॉ मटेरियल मंगवा रहे हैं, हम उसको मंगवा के उसके अंदर मेहनत करके हम चीज़ें बना के आगे बेच रहे हैं, और उससे हम अपनी ओवरऑल वेल्थ बढ़ा रहे हैं। तो अब हमें यह भी समझ लेना चाहिए कि आने वाले वक्त में अगर हमने ग्रोथ की तरफ जाना है तो हमारे पास कोई और चारा नहीं है, सिर्फ एक चारा है कि हमने कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी को ख़त्म करना है, प्रोडक्शन बेस्ड इकोनॉमी की तरफ जाना है। अगर हमने मेट्रो बस लगानी है तो हमें इस्लामाबाद में लगाने की 1.5 रुपए की कोई ज़रूरत नहीं थी, हमें मेट्रो बस लगानी चाहिए थी फैसलाबाद में, हमें मेट्रो बस लगानी चाहिए थी मुल्तान में, हमें मेट्रो बस लगानी चाहिए थी सियालकोट में जहाँ पर इंडस्ट्री है, जहाँ पर गरीब आदमी उस मेट्रो बस में बैठ के फैक्ट्री जा सकता है और वहाँ पर अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है, ना करके एक गरीब आदमी पैसा डाल के सेंटोरस आके सिर्फ एक खूबसूरत बिल्डिंग को देख सकता है। तो ये छोटे छोटे पॉलिसी डिसीजंस जो कि अनफॉर्चुनेटली हम जब आम आदमी होते हैं ना, और ये हम सब ऐसे हैं, मैं भी ऐसा ही हूँ, मैं यूरोप जाता हूँ, मैं जाके देखता हूँ, मैं कहता हूँ यार कितना यशी है यार यहाँ पे, ये वाली यशी मुझे पाकिस्तान में क्यों नहीं मिलेगी यार। भाई तू अपना बारे में सोचना छोड़, थोड़ा सा बड़ा सोच, थोड़ा सा सोच के यार इस मुल्क के एक्चुअल मसाइल क्या हैं, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करके यार लॉन्ग टर्म में तुझे मिल जाएगी ये चीज़, लेकिन पहले कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, पहले उनको फिक्स करना है, फिर इवेंचुअली हम उधर भी आ जाएंगे। यहाँ पर मैं खत्म करता हूँ। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम्स बताऊंगा, बहुत मेजर प्रॉब्लम है, एनर्जी का प्रॉब्लम बताऊंगा, बहुत मेजर प्रॉब्लम है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से जब अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी एक डेवलप्ड इकोनॉमी की तरफ जाती है तो उसमें क्या क्या स्टेप्स आते हैं। मसलन हम जब पाकिस्तान में इमेजिन करते हैं ना कि यार हमारी आईटी इंडस्ट्री कोई है नहीं, तो हम कुछ ऐसा करें कि जिसमें हमारी आईटी इंडस्ट्री जो है वो एआई की टेक बनाना शुरू कर दे। और यार ऐसे नहीं होता, बेबी स्टेप्स होते हैं, एवोल्यूशनरी होता है, ये नहीं होता कि आप एक जगह से जंप लगाओ और सीधा आसमान पे चले जाओ। हाँ, स्पोरैडिकली कुछ लोग ऐसे इमर्ज करेंगे जो कि उस लेवल ऑफ इंट्रिकेसी का काम कर सकते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज जो पूरी इकोनॉमी है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करती है। सो हमें एक्सपेक्टेशन अपनी उस हिसाब से अलाइन करना बहुत ज़रूरी है। बट एनीवेज यहाँ पर मैं ख़त्म करूँगा, मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी ये एपिसोड, समझ आया नहीं समझ आया, थोड़ा सा ये वाला ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक था, बट आई होप कि आपको समझ आ गया हो। कोई आपके कमेंट्स हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आके बताएं, व्हाट आर योर थॉट्स। थोड़ा सा मैं माजरत करूँगा, मैं एक्चुअली थोड़ा सा बीमार था, लेकिन मैंने अपने आपको टारगेट दिया हुआ है कि मैंने मंडे वेंसडे और फ्राइडे को शो अप करना है, तो इस वजह से मैंने लास्ट मोमेंट पर आके पुश लगा के मैंने किसी तरह ये एपिसोड निकाली है। बट एनीवेज एक तो मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा वो तमाम लोग जो कि इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं, इन वीडियोस के ऊपर मुझे बहुत खुशी मिल रही है। मैं साथ ही शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे पेट्रंस को जो कि नीचे दी गई हुई स्ट्राइप की लिंक को इस्तेमाल करके हमारे इस शो को सपोर्ट करते हैं और इंश्योर करते हैं कि हम ये बनाते रहें। आपको पता है एक पूरी टीम है, एडिटिंग टीम है, इसके लिए इक्विपमेंट है, तो उसकी कॉस्ट होती है, उसको हम वहाँ से कवर कर रहे हैं। इसी के साथ साथ अगले हफ्ते मैं एक वीडियो करूँगा जिसमें मैं आप लोगों के क्वेश्चंस का जवाब दूंगा, तो अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं मेरे बारे में, इकोनॉमी के बारे में, किसी चीज़ के बारे में भी, तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में दे दें। जो मोस्ट लाइक्ड क्वेश्चंस होंगे उनका मैं अगले हफ्ते एक वीडियो में डिटेल में जवाब दूंगा। बट एनीवेज दिस वाज सैयद मुजम्मिल हसन जैदी, यू आर वॉचिंग दिल की बात। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।